हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अभी हमारा रविवार या सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है, तो जो भी भक्त इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं कृपया यहाँ पे आके बैठ जाइए। यहाँ पे वैशासन है, तो प्रभुपाद जी की तरफ सब माताएं जो हैं यहाँ पे बैठेंगे, इस साइड में बैठेंगे, और सब प्रभु जी जो है इस साइड में बैठेंगे। जो भी लेडीज है इस साइड, कृपया इस साइड में आ जाइए, थोड़ा इधर आ जाइए, ये साइड में, इधर बहुत जगह है। हरे कृष्णा। सबको यहाँ पे आगे आके बैठना है, नीचे बैठना है सबको। तो 11 से 12 यहाँ पे कथा होने वाली है, बहुत ही सुंदर प्रवचन होगा। हमारे जीवन का क्या उद्देश्य है, गोवर्धन इको विलेज के बारे में आपको बहुत सारी सुंदर जानकारी भी मिलेगी यहाँ पे। आपके मन में जो भी प्रश्न है, जिज्ञासाएं है, उसके उत्तर यहाँ पे मिलेंगे।
नहीं, 12:30 के बाद कुछ लोगों को अगर प्रश्न उत्तर है तो मैं बैठूंगा यहाँ।
कृपया नीचे बैठ जाइए यहाँ पे, जो नीचे बैठ नहीं सकते तो साइड में यहाँ पे हमारे बैठने की व्यवस्था है, ऊपर बैठने की व्यवस्था है, उधर भी बैठ सकते हैं। तो 11 से 12 यहाँ पे ये प्रवचन होगा, 12 से 12:30 राजभोग आरती होगी, और 12:30 बजे सबके लिए भोजन की व्यवस्था भी है। इसके अलावा यहाँ पे प्रति वृंदावन, जो मथुरा वृंदावन है उसका एक प्रति वृंदावन हमने बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आपका भोजन प्रसाद होने के बाद वहां पे जाके घूम सकते हैं आप। तो अलग अलग जगह पे हमारे भक्त खड़े हैं जो आपको गाइड करेंगे क्या क्या है यहाँ पे देखने के लिए उसके बारे में। हरे कृष्णा। तो जिनको बैठना नहीं है कृपया करके दर्शन लेके आप दूसरे मंदिर में जा सकते हैं, आगे दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो आज के हमारे प्रवचनकर्ता है
हरे कृष्ण
श्रीमान आदि केशव प्रभु।
हरे कृष्ण
हरि बोल। तो प्रभु जी का परिचय देना चाहूंगा मैं। श्रीमान आदि केशव प्रभु जी जो है वो जो हमारा राधा गोपीनाथ मंदिर है चौपाटी, गिरगांव चौपाटी में, तो यहाँ के एक सीनियर काउंसिलर है प्रभु जी। प्रभु जी जो है, जो हमारा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है मीरा रोड, तो वहां पे एक्स मेडिकल डायरेक्टर रह चुके हैं। इसके अलावा प्रभु जी यहाँ के गोवर्धन इको विलेज के कम्युनिटी हेड भी है, और जो हमारा गोवर्धन आयुर्वेदा है उस गोवर्धन आयुर्वेदा के प्रभु जी डायरेक्टर है, मैरिज ब्यूरो के मेंबर है, और बाय प्रोफेशन प्रभु जी थे डर्मेटोलॉजिस्ट है प्रभु जी। उन्होंने अपनी जो MD है, MBBS MD जो है, उन्होंने डर्मेटोलॉजिस्ट में की है। तो प्रभु जी अभी पूरी तरह से यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में सेवा करते हैं। और आज का प्रवचन का विषय है हमारा दैवी और आसुरी स्वभाव। तो श्रीमद् भगवद गीता से प्रभु जी बोलने वाले हैं, तो यहाँ पे बोर्ड पे आप श्लोक भी देख रहे होंगे। तो प्रभु जी शुरुआत करेंगे, तो प्रभु जी का हम स्वागत करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के एक साथ हाथ ऊपर करके। हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय राधा माधव कुंज विहारी माधव कुंज विहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवर धारी आया गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजनाय यमुना तीरा वनाचारी यमुना जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा प्रसाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः ओम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे न श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा वृंदावन बिहारी राधा वृंदावन बिहारी राधे जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय हरिनाम संकीर्तन की हरे कृष्णा ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं वंदेहम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश श्री रूपं साग्र जातां सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्णापादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग हम परिचित नहीं हैं, आपके चेहरे नए हैं, मेरा चेहरा नया है आपके लिए, लेकिन मैं सबके लिए स्वागत करता हूं कि आप दूर से आए हैं, क्योंकि ये जगह इतना नज़दीक नहीं है। तो बहुत मैं धन्यवाद, मैं प्रशंसा करता हूं कि इतने उत्साह से आप दर्शन के लिए आए हैं। निश्चित हाँ ये सोच के आए हैं कि कुछ जीवन में अच्छा होना चाहिए। हाँ तो आपके श्रद्धा आपके धार्मिकता को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन मैं एक निवेदन भी करता हूँ कि जो लाइन में खड़े हैं दर्शन के लिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप लोग आपस में बात न करें, दर्शन अपने आप आगे बढ़ देंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन जो कथा सुनने के लिए बैठने हैं उनको मैं ऐसे मत करना कि उनको कुछ सुनाई न दे। मैं फिर से सभी से निवेदन करता हूँ जो दर्शन के लिए लाइन में खड़े हैं वो आपस में बात न करें, लेकिन अगर बात करना ही चाहते हैं धीमे से बात करें कि सिर्फ जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं सिर्फ उसको सुनाई दे। आज का शीर्षक उसी से संबंधित है। आज का शीर्षक है, एक है आसुरिक प्रवृत्ति और एक है दैवी प्रकृति। तो सबसे पहले मैं एक भगवद गीता का एक श्लोक जो लोग पढ़ सकते हैं वो लोग मैं उच्चार करने के बाद आप भी प्रयास कर सकते हैं उच्चार करने की। ये किसकी वाणी है, ये किसकी वाणी है, किसके मुख से आ रहा है, कोई फिल्म स्टार की मुख से आ रहा है, कोई गीतकार, किसके मुख से है? भगवान कृष्ण से है। भगवान कृष्ण की वाणी शुद्ध हो या अशुद्ध है? शुद्ध है। तो हमको मौका मिल रहा है उच्चार करने का, हमें सिर्फ उच्चार करना है। शायद हम नहीं समझे लेकिन वाणी में भी शक्ति है ना। तो ये भगवद गीता का 18 अध्याय है भगवद गीता में। 16 अध्याय उसका शीर्षक है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। आप तो सब लोग दैवी हैं लेकिन आसुरी भी जानना जरूरी है। कैसे पहचानेगी हम, अगर हमारे में भी है तो आसुरी भाव भी मालूम होना चाहिए ना क्या है। तो इस अध्याय के 23वां श्लोक है, बराबर है 16 अध्याय। कितने लोगों के पास भगवद गीता है घर में? अरे वाह आप लोग तो विद्वान है, पंडित हैं सब। तो आज के इस श्लोक के चर्चा, आज के शीर्षक के ऊपर चर्चा करने के बाद मैं आशा रखता हूं कि आप लोग भगवद गीता जाकर खोलेंगे। पढ़ा है ना, ऐसे ही पढ़ा होगा ना कहीं तो, जिसने हाथ उठाया, कौन रोज पढ़ते हैं भगवद गीता? अरे वाह, अरे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे, एक मिनट। देख सकते हैं आप, मैं बोलूंगा उसके बाद आप सब लोग मिलकर बोलेंगे, संस्कृत में है लेकिन हमें सिर्फ उच्चार करना है। य शास्त्र विधि मृत्सृज्य, जोर से, वर्तते कामकारता न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। फिर से एक बार करेंगे, सब लोग पढ़ सकते हैं, मैं चाहता हूं थोड़ा जोर से बोले, इसमें कोई शर्म आती है? मंदिर में बैठे हैं, भगवान की वाणी का उच्चार कर रहे हैं, उसमें कौन प्रसन्न कौन होगे, कौन प्रसन्न होगे, भगवान प्रसन्न होगे कि नहीं? हाँ। य शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न परम गतिम। दो बार किया, तीसरा करना बहुत मंगल होता है। फिर से एक बार, य शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते कामकारता न सा सिद्धिं वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। अब सोचा अरे तो समझ में नहीं आया हमें, लेकिन कुछ तो है। सुखम, सुखम लिखा है, सुखम पढ़ सकते हैं? कितने लोग सुख चाहते हैं? अरे बस कुछ ही लोग ने हाथ उठाया। अगर सुख नहीं चाहते तो आते नहीं थे आज। सुख की अभी अपेक्षा होगी ना, तो एक तो समझ में आया, दूसरा क्या है? परम गतिम है ना, गति कहां जाएगी, कहां आपकी गति होगी, ये भी लिखा है, शास्त्र लिखा है। तो अब तो हो गया, इतना तो समझ में आया, शास्त्र के बारे में है, सुख के बारे में है, और आगे गति क्या होगी, ये तो समझ गए। तो देखो अनुवाद में क्या लिखा है, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि ना सुख ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। कौन बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे होगे शायद, नहीं हमें फंसा रहे हैं क्या? नहीं फंसाएंगे ना, देखो वो स्पष्ट बोल रहे हैं। तो ये एक हमारी सब लोग श्रद्धालु है, धार्मिक है, मंदिर जाना पसंद करते हैं, लेकिन एक पसंद नहीं आता है लोगों को। क्या नहीं पसंद आता है? ये तुमले हरे कृष्णा वाले का हमें बहुत कुछ अच्छा लगता है, लेकिन ये बोलते हैं ना तुम लोग, ये करो ये मत करो, वो नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना, ये हमें पसंद नहीं है, होता है कि नहीं? लेकिन यहां बताया है, जो शास्त्र विधि मृत्सृज्य वर्तते कामकारता, कामकारता का अर्थ क्या है? अपने मनगढ़ित करता है। मनगढ़ित का समझ से आप क्या लगता है आपको? जो मेरे मन में आया वही सही है, मुझे जो लग रहा है वही सही है, अगर मैं, मुझे पसंद है, मैं कर रहा हूं तो वही अच्छा है, होता है क्या ऐसे? नहीं होता है ऐसे, नहीं ऐसा होता है। ज्यादातर शास्त्र के बारे में सुनना या कोई हमें बताता है तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, अच्छा लगता है बुरा लगता है? किसी को पसंद नहीं है, कोई बोलता है ये मत करो, अरे तुम कौन होते हैं बताने वाले, मैं तो स्वतंत्र हूं, मुझे मालूम है क्या करना चाहिए। लेकिन भगवान यहां पे बताते हैं ऐसे लोगों को कामकारता बताया, यानी अपने मर्जी से, आप जानते हैं अपने मन में आया वैसे करना। अभी देखो बच्चे हैं ना, अभी देखो बच्चे हैं, बच्चों को कुछ मालूम नहीं रहता ना, वो मन में आया कर देते हैं ऐसे। हाँ कभी बैठे बैठे बच्चा रोने लगता है, उसको नहीं मालूम कि यहाँ सत्संग में बैठा है, अरे मन में आया कर दिया। तो हम लोग भी अगर ऐसे करने लगेंगे तो क्या भगवान आपको पसंद करेंगे? तो इसलिए शास्त्र को सुनना जरूरी है, शास्त्र में क्या लिखा है, ऐसे नहीं कि टीवी में देखा मैंने, पेपर में पढ़ा। एक परंपरा में शास्त्र आती है, ज्ञान दे रहा है। क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि ऐसे सुनने से और ऐसे पालन करने से आपको सुख की प्राप्ति होती है और आपकी गति बहुत ही अनुकूल होती है। ये तो आप लोगों ने सबने बताया हमको सुख चाहिए, लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं जो नहीं पालन करता है उसको इस जीवन में सुख नहीं है, अगले जीवन में भी सुख नहीं है। क्या मैं डरा रहा हूँ क्या आपको? सिर्फ इतना ही है कि शास्त्र के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसा ये 16वें अध्याय का श्लोक बोल रहा है। आगे पीछे के श्लोक में ये भी बताया गया है, भगवान कहते हैं कि संसार में सिर्फ दो ही तरह के लोग हैं। कौन है ये दो तरह के लोग? कौन है? अच्छे और बुरे। अर्थात यहां पे शीर्षक क्या दिया है? जिसमें दैवी गुण है, किसमें आसुरिक गुण है। हमारे शास्त्र में ऐसे लिखा है कि जो सतयुग था ना, सतयुग सब लोग सुना है, सतयुग सुना है ना? अरे ये तो कलयुग है, हम सब दोष देते हैं ना, कलयुग में ऐसा ही होता है। सतयुग में भी ऐसे लोग थे। किस तरह के लोग? दैवी और आसुरिक। लेकिन लोग कहां पे थे? अलग अलग ग्रह में रहते थे। ग्रह एक अपने एक ग्रह में है, जैसे आपने सुना होगा हिरण्यकशिपु, उसका एक अलग ग्रह था, और इंद्र देवता लोग अलग ग्रह में रहते थे। लेकिन वो साधारण असुर नहीं था, वो इंद्र को भी पराजय कर सकता, उतनी शक्ति थी। लेकिन त्रेता युग में आसुरिक और देवी प्रकृति वाले एक ही ग्रह में रहते हैं, लेकिन अलग अलग देश में रहते थे। उदाहरण, रावण श्रीलंका में और राम अयोध्या में। फिर आगे द्वापर युग में एक ही शहर में रहते थे। उसका उदाहरण क्या है? कौरव हस्तिनापुर में रहते थे और पांडव इंद्रप्रस्थ में रहते थे। अभी थोड़ा सा डरावना है, सुनना है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग में कहते हैं, मैंने कह रहा हूं, आसुरिक प्रवृत्ति और दैवी प्रवृत्ति कहां रहते हैं? हमारे ही अंदर। किधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, हमारे ही अंदर। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमको दूसरों की गलती दिखती है, दूसरों की आसुरिक प्रवृत्ति दिखती है और हमसे बहुत नाराज होते हैं, ये नहीं देखते कि मेरे में भी है। तो इस विषय पर आज हमें चर्चा करना है। क्या सब लोग तैयार हैं? अगर कोई कहता है आप जो बोल रहे हैं मैं नहीं मानता, मेरे हृदय में सिर्फ दैवी ही दैवी है, आप हाथ उठाइए, हम लोग आपको सब लोग आकर दंडवत प्रणाम करेंगे आपको। एक कलयुग है, कलयुग में दोनों तरह की प्रवृत्ति हमारे हृदय में नहीं है। उदाहरण दूं मैं आपको, आप अपने आप से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं लगता? आज आपको दिल लगा चलो मंदिर चलते हैं, ये कौन सी प्रवृत्ति है? कभी ऐसा लगता है अरे छोड़ो यार क्या है, मंदिर में क्या रखा है, चलो कोई पिक्चर देखने जाते हैं, कुछ ऐसे कुछ पिक्चर देखते हैं, या तो कुछ चलो होटल चले जाते हैं, या तो कुछ ऐसे बातें करते हैं, या तो ऐसे कार्य करते हैं जो भगवान को हमें बुला देता है, पूरी तरह से माया के वश में आते हैं, तो वो कौन सी प्रवृत्ति है? है ना, सुनने बहुत बुरा लगता है, अरे ये क्या हुआ, इसको भी आसुरी, ये भी आसुरिक प्रवृत्ति। तो हम क्यों ये चर्चा कर रहे हैं? इसलिए कि भगवान की ओर बढ़ना है, भगवान से और आकर्षित होना है, जो जीवन का लक्ष्य है उसके लिए कौन सी प्रवृत्ति की जरूरत है? दैवी प्रकृति की जरूरत है ना, तो इसलिए मैं फिर से निवेदन करता हूं, जो लोग लाइन में खड़े हैं वो लोग अगर बात करना ही चाहते हैं तो धीमे से बात करें, सिर्फ जिससे बात कर रहे हैं सिर्फ उनको ही सुनाई देना चाहिए, आपकी आवाज यहां तक आ रही है तो इससे जो सुन रहे कथा उन लोगों को दिक्कत हो रही है, बहुत सुन रहे हैं कि कोई जो भाव भी बात कर रहे हैं वो सुन भी नहीं रहे,
मुश्किल है।
तो ऐसा है, समय तो नहीं अपने पास ज्यादा, जैसे दो व्यक्ति है ना, मैंने बोला दो व्यक्ति के लोग ही हैं और कलयुग में हमारे हृदय में, वैसे पुराणों में बताया गया है कि 84 लाख योनि है, सुना है आपने, जैसे समुद्र के नीचे कोई जीव होते हैं, अलग अलग जीव है ना, अलग अलग रूप है उसका, तो वो कुछ हैं, कुछ अपने जमीन के ऊपर चलने वाले, कुछ पेड़ है, कुछ हवा में उड़ने वाले हैं, ऐसे 84 लाख, और उसमें जानवर है, पशु है, और उसमें इंसान भी है, तो 84 लाख में इंसान कितने हैं मालूम है? 4 लाख। अरे आप तो बोले कि सब इंसान तो एक तरह लगते हैं, थोड़े थोड़े बाहर से तो अलग लगते हैं ना, जो परदेशी अमेरिका से आते हैं कहते हैं अरे ये तो गोरा है, कोई यूरोप से आता है, कोई चाइनीस आता है, या कोई जंगल में रहता है, कोई अफ्रीका में है, तो उनको लगता है अरे शायद ये भी एक योनी है, नहीं, ये 4 लाख योनी अपने चेतना के ऊपर है, जिसकी चेतना बहुत गिरी हुई है, जो सिर्फ पाप कार्य में लगा हुआ है, जो बहुत क्रूरता से देखता है, हिंसा करता है, घमंडी है, हमेशा यही अपेक्षा करता है कि दूसरे लोग मुझे मेरी इज्जत करें, खुद को बहुत समझता है मैं धार्मिक हूं, खुद को समझता है कि बहुत मैं प्रगति किया हूं, मैं बड़ा भक्त हूं, जब ये सब विचार आते हैं तो वो भी एक चेतना का एक, तो उस तरह से वो उस स्तर में रहता है। और जो भगवद गीता में बताया जाता है कि कौन से लोग हैं जो दैवी प्रकृति दैवी गुण हैं, तो वो हमारे पहले श्लोक में दिया गया है, तो ये 16 अध्याय का जो पहला 3 श्लोक है ना, ये बहुत अनिवार्य है अगर आप चाहते हैं कि मेरे में भी दैवी प्रकृति, मेरे में भी दैवी संपदा, दैवी गुण ये जाग जाए, क्योंकि दैवी गुण से भगवान आकर्षित होते हैं। तो ये जो श्लोक 16 अध्याय का पहला 3 श्लोक है, अब इस बार यहां तो लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसको सिर्फ सुनने से भी बहुत कुछ हमारी आसुरिक प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, सिर्फ उसके पीछे एक कथा है, अगर तो मैं इसको उच्चार करूंगा, तो ये भी एक भगवान की वाणी है, और इसको सिर्फ सुनने से, इसके अगर अनुवाद सुनेंगे तो 26 ऐसे गुण हैं, फिर आप अपने आप से पूछ सकते हैं मेरे में कितने ऐसे गुण हैं, आप पूछ सकते हैं, खुद ही आपका रिपोर्ट कार्ड बना दीजिए आप, हाँ आसुरिक नहीं बताऊंगा मैं। हरे कृष्णा। हरे हरे, शांत हो गए हैं। हाँ, ये 16वें अध्याय जो है ना, उसका जो पहला 3 श्लोक इस तरह बता रहा है, श्री भगवान उवाच अभयम् सत्व संशुद्धिर् ज्ञान योगा व्यवस्थिति धानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्यायस्तपर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्याग शांतिर अपैशुनम् दया भूतेष्व अलोलुप्त्वम् मार्दवम् अचपलम् तेज क्षमादृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदब दैवीम् अभिजातस्य भारता। आपको सुनना है क्या गुण क्या होते हैं, भगवान ने कहा हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, ध्यान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेद ज्ञान, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, चिद्रन्वेषण में आरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। मैंने क्या बताया, कलयुग में दैवी और असुरिक दोनों हैं। तो ये जो शास्त्र के नियमों को जब हम पालन करते हैं तो हमारे दिल हृदय में दैवी गुण बढ़ जाती है। तब दैवी बढ़ जाती है तो अपने आप आसुरिक गुण नष्ट हो जाती। तो इसलिए ये श्लोक को चुना गया है कि क्यों शास्त्र में कैसे बताया गया है, उस नियमों को क्यों पालन करना चाहिए। एक उदाहरण मैं दे सकता हूं, हमें पसंद नहीं है शास्त्र, क्योंकि अरे शास्त्र बहुत बताता है वो मत करो। आप ही सोचिए, आप जो हाईवे में है या शहर में जाते हैं तो गाड़ियां उधर इधर जाती है, अगर सिग्नल नहीं होता तो क्या होगा? कोई बोलेगा ये सिग्नल बहुत ही बेकार है, अरे रोकना पड़ता है, मैं सिग्नल भी नहीं पसंद नहीं करता। सब लोग इस तरह सोचने लगेंगे, सब लोग सोचेंगे कि सिग्नल देखने की गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं है, जैसे मन में आए वैसे चलाओ, तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा, क्या होगा ना हालत। तो जिस तरह से एक समाज में नियम पालन करना जरूरी है, उसी तरह से प्रकृति के भी कुछ नियम होते हैं। अगर प्रकृति के नियम हम नहीं करते हैं, हम सोचा रहे इसके लिए तो कोई पुलिस विलिस तो है नहीं कुछ, लेकिन उसके भी नियंत्रण करने वाले हैं। अब प्रकृति के भी आपका हिसाब रखा जाएगा, आप क्या कर रहे हैं, हमारे आंखों से नहीं दिखाई देता है लेकिन उसके दंड हमें देने पड़ते हैं, ऐसे यहाँ पे बताया गया। तो आप बोले अरे ये तो आप बहुत डरा रहे हैं हमें, लेकिन सच ये है कि नियम पालन करने से ही सच्चा सुख का अनुभव कर सकते हैं। आप लोगों ने सबने हाथ उठाया, हम सुख सुख होना चाहते हैं। हाँ, जैसे वही उदाहरण, हाँ अगर कोई कहता है कि अरे मैं तो स्वतंत्रता रहना, मुझे कोई बोलना नहीं चाहिए, मैं जैसे चाहता हूँ वैसे करेगा, जो अगर नियम का पालन नहीं पालन करता है, जो गाड़ी चलाता है बोलते मैं नहीं करता, चलाओ गाड़ी, क्या करेगा उससे, क्या होगा? पुलिस पकड़ेगी उसको, पुलिस पकड़ेगी तो क्या करेगी, लाइसेंस ले लेगी उसकी, अगर लाइसेंस ले लेगी तो फिर वो गाड़ी चला सकता है? जो नियम पालन करता है वो उसका क्या हालत है, आराम से चला सकता है। तो सुख काम है, जिसका लाइसेंस ले लिया उसमें सुख है क्या? जिसको छूट दी गई है चलाओ, तुम किधर चलाना है चलाओ। तो ये सच्चा समझना है, ऐसे नहीं सोचना है कि ये शास्त्र हमारे लिए बहुत कठोर लग रहा है, नहीं, ये शास्त्र हमारे हित के लिए। तो ये जो इतने सारे 26 बताए हैं, कुछ तो आपको समझ में आया होगा ना, दया, हाँ क्षमता, हाँ कितने ऐसे, पवित्रता, स्वाध्याय। तो एक ऐसे कथा है कि ये जो श्लोक में कितने शक्ति है। एक ऐसे सूरत में एक राजा था, इसका नाम था खड़ग भाऊ, ऐसा एक राजा था। तो आप जानते हैं राजाओं के क्या होती है, उनके पास तो धन तो होते हैं, साथ में उनके पास घोड़े हाथी भी होते हैं, है ना, वही उनका होता है ना, ये बहुत कई सालों पुरानी बात है। तो एक बार ऐसे हुआ कि उसका एक हाथी है वो पागल हो गया। कभी आपने देखा है पागल हाथी को, देखा है कभी किसने देखा है, कभी पागल हाथी को देखा नहीं, देखा, देखना भी मत, हाँ कभी आ जाएगा सामने तो आपको मार डालेगा, क्योंकि पागल हाथी अपने वश में नहीं रहता है, जो सामने आया है वो सब कुचल देता है। तो सब लोग भागने लगे उधर, किसी को समझ में नहीं आया क्या करे, पागल हाथी घर दिखे, आदमी देखे, किसी को भी नहीं छोड़ता, कोई पेड़ हो या कोई जंग ऐसे कुछ वन, ये क्या बोलते गार्डन हो, सबको कुचाल देता। तो सब लोग भाग रहे थे, तो उस समय हाथी जा रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे हैं वहां मत जाओ हाथी जा रहा है। तो एक ब्राह्मण नदी से स्नान करके उसी दिशा में जा रहा था, सब लोगों ने चिल्लाया अरे मत जाओ बच जाओ हाथी है। वो पूरी तरह से मन में पूरी तरह से मग्न हुआ था, कुछ मंत्र बोल रहा था, अब किसी को मालूम नहीं क्या बोल रहा था, लेकिन वो उसको सुनाई नहीं दे रहा था। तो जैसे वो हाथी आ रही है और ये ब्राह्मण सामने जा रहा है, पूरे मन में इस तरह उच्चार करते हुए वो पागल हाथी शांत हो गया। सब लोग दूर से देख रहे हैं अरे, और ये ब्राह्मण ने जाकर उस हाथी के सर के ऊपर हाथ रखा और हाथी शांत हो। तो ये पहुंच गई राजा के पास। तो राजा ने बुलाया, बाबा ये क्या तुमने किया भाई, क्या कर रहे थे तुम, हम लोग कोई नहीं कर सके, तुमने कैसे किया? तो वो बोला, नहीं मेरी आदत है, मैं जब नदी से स्नान करके जाता हूं तो ये जो मैंने पहला दूसरा तीसरा श्लोक है ना 16 जो हमने उच्चार किया, ये मेरी आदत है, मैं उसको उच्चार करते जाता हूं। तो इस 3 श्लोकों में इतनी शक्ति है। ये गीता महात्म्य बोल के एक ग्रंथ है, उसमें ये कहानी आती है। इसमें लिखा है कि जो लोग ये श्लोक को दोहराते हैं, अगर घर में बहुत हो रहा है ऐसे तो ये निकालो और जरा पढ़ो जोर से, देखो आप लोग जरूर तुरंत आप लोग अनुभव करेंगे कि शांत हो गए। लेकिन हाथी के ऊपर मत करना, आपसे नहीं होगा, वो खाली वो ब्राह्मण कर सका, वो पागल हाथी के ऊपर मर जाएगा आप। तो ये भी एक ऐसे कथा है। हाँ, तो ये गीता महात्म्या में आता है। तो इसमें ये कहीं श्लोकों में एक श्लोक में बताया गया है कि जो अच्छे गुण है ना, हम लोग एक अच्छा गुण लेंगे और एक असुरी गुण लेंगे, ज्यादा तो हम चर्चा नहीं कर सकेंगे। तो अच्छे गुण में एक आपको जानने जैसा एक बहुत अच्छा बात है यहाँ, क्या गया 16 या 16 देवियो। हाँ, अभयम सत्व संशुद्धि। अभयम तो सब लोग पहचान लिया ना, अभयम ये भी एक दैवी गुण है। आपको क्या लगता है अभयम का अर्थ क्या है? अभयम यानी डर नहीं है। डर तो ये बहुत बड़ी चिंता है ना, ये सच है कि नहीं? सबसे अभी हमें ध्यान से अगर हमें पूछूंगा, ज्यादातर लोग यहां बैठे रहते हैं, एक तो पछता रहे हैं भूतकाल में जो हो गया, अरे क्या हो गया, गलती हुआ, नहीं होना चाहिए था, और एक है भविष्य के बारे में चिंता कर रहे हैं, भय कर रहे हैं ना, क्या होगा, पैसा नहीं रहेगा, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी करना है, अरे कल कुछ बीमार पड़ जाऊंगा मैं, कल ऐसा होगा, लोन मैं दे सकूंगा कि नहीं, है ना, सब ये भविष्य के, हुआ कुछ नहीं लेकिन चिंता, और वर्तमान से असंतुष्ट है, जो चल रहा है अभी उससे असंतुष्ट है, कोई पसंद नहीं है, ऐसा क्यों। इसका मतलब भूतकाल से पश्चाताप, वर्तमान से असंतुष्ट और भविष्य के लिए, तो ऐसे लोग अभयम कैसे हो सकते? तो अभयम का अर्थ ये है जो पूरी तरह से श्रद्धा रखता है, ये बहुत ऊंची बात है, मैं कभी भी अकेला नहीं हूं। कितने लोग समझते हैं कि आप अकेले नहीं है, उससे कितने लोग सहमत है? जंगल में अंधेरे में भी आप अकेले नहीं है, डरावना है, कोई नहीं है आसपास। और मैं आपको पूछूंगा आप, हाँ भाई मैं अकेला हूं, डर लग रहा है, लेकिन जिसको लगता है वो कभी अकेला नहीं है वो कौन हो सकता है? जिन्होंने पूरी तरह से भगवान का आश्रय लिया है, उसको कभी ऐसा नहीं लगता है कि भगवान मेरे साथ नहीं है। कोई उदाहरण है आपके पास ऐसा, देखा है ऐसे कोई व्यक्ति? अब आज के युग में देखना मुश्किल है, लेकिन है ऐसे बड़े बड़े महान, आज के दिन भी ऐसे भक्त लोग हैं जैसे हमारे प्रभुपाद हैं, अकेले 70 साल की उम्र में गए, कुछ पैसा नहीं कुछ नहीं, चले गए परदेशी और पूरा एक आंदोलन शुरू कर दिया इतने ऊपर। लेकिन भागवत कथा में आता है प्रहलाद महाराज की कथा आती है। हम तो ऐसे जगह पे रहते हुए भयभीत होते हैं, प्रहलाद कौन से जगह पे था, चारों तरफ किस तरह के लोग थे, सब लोग उसको मारने की योजना बना रहे थे। उसके पिताजी ने क्या क्या नहीं किया मारने के लिए, कभी भी प्रहलाद को डर आ गया, क्यों नहीं आया डर, पूरी तरह से भगवान का स्मरण कर रहे थे। हाँ, मारे कृष्णा राके कौन, राके कृष्णा। अभी ये स्थिति में हम हमारी चेतना उतनी विकसित नहीं है, लेकिन यही जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य शरीर सिर्फ इसलिए मिला है, मनुष्य शरीर इसलिए नहीं मिला है कि बस पढ़ाई करो, पैसे कमाओ और बुढ़ापा मृत्यु खत्म। ऐसा लगता है आपको ये जीवन का लक्ष्य है? जो आत्मा है उस आत्मा को विकसित करना ये जीवन की लक्ष्य है। तो अगर आप मंदिर आते हैं यहां पे सिर्फ भगवान से प्रणाम करने के लिए नहीं, ये भी ज्ञान के बारे में कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है, सच्चा सुख क्या है, ये कहां मिलेगा आपको? ये ज्ञान शास्त्र में मिलेगा। और जो लोग शास्त्र पालन करते हैं, जो अनुभव करते हैं, उन लोगों के संग में आपको आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी। ऐसे लोग आपको कहीं भी मिल जाएंगे कि मंदिर में मिलेंगे? तो तीर्थ स्थान में आना पड़ता है ना, ऐसे कहां भी नहीं मिलेगा ना, मनोहर के बाजार में मिलेंगे आपको, वसई रेलवे स्टेशन में मिलेंगे, मुश्किल है उनको ढूंढना। तो इसलिए ऐसे जगह पे आना, ऐसे लोगों का संग करना और अपने श्रद्धा को बढ़ाना। श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होता ना। अभी जितने लोग यहां बैठे हैं श्रद्धा है इसलिए बैठे हैं ना, तो ये श्रद्धा ही बहुत बड़ी देन है भगवान की। जिनको श्रद्धा नहीं है आसुरी प्रवृत्ति। तो ये सब कुछ अपने आप नहीं, कई बार पैदा होते ही ऐसे गुण आ जाते हैं। तो उसमें से एक जो गुण बताया गया है वो सबके लिए ध्यान से सुनिए, आपको ये सुनना जरूरी है। सत्व संशुद्धि बताया है। संस्कार शब्द सुना है आपने? संस्कार सुना है ना, संस्कार शब्द नहीं सुना है, संस्कार, अरे अच्छे संस्कार। तो अच्छे संस्कार, संस्कार का अर्थ है अपने जीवन में ऐसे कोई कार्य करना जिससे हमारी चेतना में शुद्धिकरण होती। कोई संस्कार जानते हैं आप? कुछ नाम किसी को मालूम है? कोई संस्कार कोई बोल सकता है? एक तो संस्कार ऐसा है कि हमारे पैदे होने के पहले होता है। अरे हमने तो नहीं किया, तो किसने किया? और एक है हम मरने के बाद करते हैं, वो भी हम नहीं कर सकते हैं, कोई और करता है। और इसके बीच में ऐसे बहुत सारे संस्कार हैं। संस्कार यानी हमारे जीवन में कुछ ऐसा चिन्ह हो जाए चेतना में वो हमारे भविष्य के लिए अच्छा हो। जैसे विवाह भी एक संस्कार है ना, कि नहीं मानते आप? विवाह होता है ना आजकल, तो विवाह भी एक संस्कार है ना, उसके एक उद्देश्य होते हैं। तो जो हम पैदा होने से पहले होता है वो संस्कार का नाम बता सकता है कोई? जोर से बोलो जरा, गर्भदान संस्कार। अभी इसकी क्या जरूरत है आज इसमें यही सब डिस्कस करने में, क्योंकि आज के विषय से संबंधित है। मैंने बताया असुरिक और दैविक, लेकिन कुछ बच्चे पैदाइशी अच्छे गुण लेके आते हैं, तो ये कैसे होता है? क्योंकि माँ बाप ने पैदा होने से पहले ऐसे संस्कार किया, उसमें से एक संस्कार है गर्भदान संस्कार। अब शास्त्र में पढ़ने जाएंगे तो बहुत कुछ है। तो जो भी वधु विवाह होने के बाद समझते हैं अरे शादी हुआ है अगले बार बस, अभी तो परिवार के लोग क्या कुछ हो गया कुछ क्या, बच्चे यही पूछते हैं, ऐसा लगता है कि बस पति पत्नी साथ में आ जाते ये तो स्वाभाविक है, हो जाएगा, हो तो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जो बच्चा पैदा होगा पैदा होते ही अच्छे गुण लेके आएगा। कोई माता पिता नहीं चाहता है, ऐसा कोई है? सब माता पिता चाहते हैं। तो इसके बारे में बताया यहाँ पे ये भी, हाँ, दैवी गुण में ये बताया गया कि कैसे अपने पति और पत्नी दोनों एक विचार के हैं और लोग, और ये आज के जमाने में ये तो ऐसे ही हो जाता है, लेकिन पुराने जमाने में अगर राजा और रानी साथ में आ रहे तो पूरे प्रजा को मालूम रहता था, अरे आज राजा और रानी साथ आने वाले, गर्भदान संस्कार होने वाले, तो एक भी बड़ा उत्सव हो जाता और सब लोग उनके हित के लिए प्रार्थना करते थे। क्यों? क्योंकि भविष्य के बारे में है। तो जिस तरह की चेतना होती है उस समय, उस तरह के आत्मा को आप आकर्षित करते हैं। ऐसे कितने आत्माएं हैं लाइन में खड़े हैं कहीं भी आ जाने के, कोई भी गर्भ में प्रवेश करने के लिए, लेकिन जो माता जो पिता इस विचार से साथ में आते हैं जो धर्म के अनुसार है, तो उनके चेतना कैसी है उस तरह के आत्मा आकर्षित होती है, और उसके बाद वो बच्चे में ऐसे गुण रहते हैं वो समाज के लिए एक बहुत बड़ा वरदान हो जाता है। जो ऐसे नहीं करते हैं, बच्चे छोटे हैं तो बहुत अच्छे नटखट लगते हैं, मुस्कुराते हैं, लेकिन यही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माता पिता को खुश रखते हैं, शोक देते हैं। देखो माता जी बहुत धीमे से बोल रही है, शोक देते हैं, क्योंकि सबका अनुभव है, तभी तो बहुत देर हो चुकी है ना, आपने नहीं किया। बच्चे का पहले तो कुछ लक्षण सब अच्छा दिख रहा था, लेकिन 18 साल 19 साल 20 साल के बाद सब बाहर आ जाता है, उसके आसुरिक प्रवृत्ति आते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनता है, उसको माँ बाप को पैर पकड़ना पड़ता, ऐसा मत कर ऐसा मत कर। लेकिन इसमें एक संस्कार आता है जो करने से, आपको मालूम है प्रहलाद का कैसे हुआ था जन्म? दूसरे भी कारण थे, वही लड़का प्रहलाद, किसी को मालूम है? प्रहलाद के जन्म होने से पहले हिरण्यकशिपु जो असुर था वो तपस्या करने के लिए गया, और तपस्या इसलिए चाहता था कि वो नारायण को भी वश में रखो, नारायण का खिलाफ था, भगवान का खिलाफ था वो, तो चला गया। तो ये भी एक योजना थी देवताओं की, और तपस्या कर रहा है तो समीप के एक पेड़ में एक चिड़िया, वो तपस्या ध्यान लगा रहा है, बोल रहा है नारायण नारायण, उसने ऐसे भगा दिया उस चिड़िया को, भाग जा, फिर ध्यान लगाया, तपस्या कर रहा है कुछ स्वार्थ के लिए, शक्ति के लिए, वो चिड़िया फिर से बोले नारायण नारायण नारायण, तो क्रोधित हो गया, बार बार कर रहा है और नारायण ऐसा नाम है जिसका वो उसको पसंद नहीं है, उसका तो शत्रु है। तो बहुत गुस्से में घर वापस आ गया, घर वापस आ गया तो उसके पत्नी ने पूछा क्या बात है आप तपस्या के लिए गए थे इतना जल्दी कैसे है? अरे ऐसे ऐसे हो गया, मैं गया था तो ध्यान लगा रहा था लेकिन वहां पे एक चिड़िया नारायण नारायण बोल रही थी, जो कयादु थी ना वो थोड़ी श्रद्धालु थी, उसको नारायण जैसे अपने पति के मुख से नारायण का नाम सुना तो उसने ऐसा किया, नहीं 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 मैं सुना नहीं, फिर से बोलना, फिर से क्या बोला? अरे मैंने बताया ना नारायण नारायण, नहीं 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 क्या क्या था, अरे नारायण नारायण नारायण, ऐसे करके कैदू ने हिरण्यकशिपु के मुख से इतने बार नारायण 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 नारायण, उस चेतना के स्थिति में वो अपने पत्नी के साथ मिला तो कौन पैदा हो गया। तो आप ये संस्कार के बारे में उसको ऐसे मत सोचना कि ये पुराने किलात के लोग हैं तुम लोग, ऐसे संशोधन भी हुआ है हमारे ही देश में हमारे ही शहर में। एक ऐसे महिला थी वो जब कॉलेज में देखा कि सब लोग बिगड़ गए हैं बच्चे, अभी तो स्कूल में गई थी स्कूल में भी बच्चे सब कोई सुनने के लिए तैयार नहीं, तो उसने सोचा एक ही सलूशन है, जो जिनका नया शादी होता है मैं उनको ये ज्ञान देता हूँ, तो जिनका शादी हुआ उनको उन्होंने ज्ञान दिया, तो कहीं ऐसे दाम्पत्य थे पति पत्नी उनके बच्चों को उसने कई सालों तक देखा तो उसमें बहुत कुछ फर्क देखा उसने बच्चों में, ये बच्चे अलग थे दूसरे बच्चों से, शांत स्वभाव के थे, हाँ उनमें ऐसे कोई प्रवृत्ति नहीं थी, बहुत ही अच्छे गुण थे। तो कहने का मतलब है जो भगवद गीता में बताया गया है इसको साधारण नहीं समझना, ये हमारे हित के लिए। तो वैसे एक थोड़ा सा अब यार बहुत गंभीर विषय बहुत गंभीर हो रहा है। एक यहाँ पे ये भी प्रवृत्ति बताया गया है कि ध्यान करना चाहिए। अब ये तो बहुत दिल के लिए, पैसा तो मेरे दिल के लिए बहुत है ना, पैसा नहीं मांगना भाई, पैसा तो मेरा है, मैं इतना मेहनत से कमाया है। लेकिन सिर्फ एक ही आश्रम है जो पैसे कमाता है, कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी कमाते हैं, सन्यासी कमाते हैं, वानप्रस्थी कमाते हैं। तो गृहस्थों को अपना कमाया हुआ उसमें से थोड़ा अंश ऐसे विषयों के लिए देना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। ये भी एक अच्छा गुण है। ये नहीं कहते हैं कि आप सब तो नहीं दे सकते, लेकिन कुछ देने से क्या होता है, लोभ कम हो जाता है। और यही अध्याय में बताया गया है कि जिसके हृदय में लोभ ज्यादा है उसका रास्ता नरक की ओर है। आप नरक की ओर जाना चाहते हैं? कोई नहीं चाहता है। इसलिए दान देना, लेकिन आजकल तो बहुत हिसाब तो बहुत कुछ रखते हैं ना हम लोग ऐसे, अरे कितना, अरे इतना गया इतना गया। कोई आके मांग रहा है तो, कोई जन्माष्टमी के लिए कोई आके मांग रहा है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, क्या हरे कृष्ण वाले पैसे मांगने आते हैं कुछ भी है। ये मत भूलना कि जो मांगने आ रहे हैं हमारे अच्छे के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हम अगर देंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा, लेकिन हिसाब भी तो सब रखते हैं ना। तो ऐसा एक एक ऐसा एक बालाजी तिरुपति है ना, तो वहां पे तो आप जानते हैं पूरे हमारे विश्व में सबसे अमीर मंदिर रहने बालाजी, तो सबसे ज्यादा देते हैं वो खर टैक्स देते हैं। और कई लोग उद्योगपति लोग ऐसे बिजनेस करते हैं, तो उसमें से ऐसा एक था, उसने जाके भगवान से बोला मैं ऐसा ऐसा मेरा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है और उसमें 10 लाख का मुनाफा है, अगर 10 लाख आ गया 5 लाख मैं आपको दे दूंगा। और ऐसे बहुत गंभीरता से वचन लेके चला गया। तो बहुत मेहनत के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट लग गया और सब कुछ हो गया, खाली एक ही प्रॉब्लम हो गया, मुनाफा 10 लाख के बदले में सिर्फ 5 लाख हो गया। तो फिर कई दिनों और वो चुप बैठा, उसने क्या बोला क्या था, मैं आपको 5 लाख दूंगा। तो फिर कई दिनों के महीनों के बाद मंदिर गया तो भगवान ने पूछा, अरे तुमने तो वचन लिया था मुझे कि 10 लाख मुनाफा होगा तो 5 लाख मैं आपको दे दूंगा। अरे क्या आप भी क्या है, आपने तो अपना 5 लाख पहले ले लिया। तो इस तरह से जो इतना हिसाब रखते हैं कभी, लेकिन यहां बताया है कि देना चाहिए। तो समय अपने पास नहीं है, तो ये है ये प्रवृत्ति। उसी तरह से भगवान आगे चौथे अध्याय चौथे श्लोक में बताते हैं, संक्षेप में सुनिए, क्योंकि आगे सब श्लोक में क्या बताया मालूम है, सब आसुरिक प्रवृत्ति की बात में बताया, क्योंकि कलयुग में ये सुनना ज्यादा जरूरी है। तो उसमें से एक ही श्लोक पढ़ूंगा मैं, धम्बो धर्पो विमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादम आसुरीम आसुरीम संपद। वो कौन सा है, ये प्रताप पुत्र दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा ज्ञान, ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। तो कथा को समाप्त करते हुए मैं ये बताऊंगा कि हृदय में दोनों तरह की प्रवृत्ति है, लेकिन भक्ति में आगे बढ़ना है तो दैवी प्रकृति को बढ़ाना है, तभी हम भगवान के इस विषयों को समझ सकते हैं, श्रद्धा बढ़ सकता है, धर्म के कार्य के लिए उत्साह बढ़ सकता है, मंदिर में आने के लिए इच्छा होगी, एक जगह पे बैठ के कथा सुनने में इंटरेस्ट आएगा, घर में जाके भी करेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो का कार्य नहीं करेंगे, बुद्धि एकदम बहुत साफ विवेक हो जाएगा। अरे तो बहुत कुछ है कैसे समझे, इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद ने इतना आसान कर दिया हम सबके लिए। आपने हमारे संस्थापक आचार्य का दर्शन किया, इनके बारे में तो कथा कभी और कभी ऐसा आएगा सुनेंगे, लेकिन संक्षेप में ये है कि इन्होंने अपने गुरु के आज्ञा पालन करने के लिए अकेले पाश्चात्य देश चले गए, कोई ऐसे जा नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ जाने के बाद आप उन लोगों के संग में आप दूषित हो जाते हैं, लेकिन इन्होंने तो वहाँ जाकर उन लोगों को बदल दिया। ऐसे इतिहास में कभी नहीं हुआ है, तो इन्होंने वहां जाके किया है, तो उन लोगों को ये सब समझा सकते हैं क्या? 16वां अध्याय के बता सकते हैं ये सब? दान करना है, समशुद्धि, गर्भदान संस्कार, सुनेंगे समझेगा कुछ? तो हम सबकी परम भाग्य है कि उन्होंने इतना आसान कर दिया। उन्होंने सिर्फ कहा 4 नियमों का पालन करो। अहिंसा का तो शब्द सुना है ना, तो उसमें से एक है, हमें पसंद है इसलिए हम किसी और का हिंसा नहीं करना चाहिए। आप करेगी? आप, मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं दूसरों को हिंसा करेगी, करेगी आप? इसमें से कोई करेगा हिंसा? देखो सब लोग सर हिला रहे हैं अभी। आप इसके लिए मांसाहारी करना ये हिंसा करने जैसे, तो एक नियम उन्होंने बताया। वो दूसरा बताया नशा नहीं करना चाहिए। अरे नशा करने से क्या पाप होता है? मैंने पैसे लिया, मैंने पी लिया, पहले से ही नशे में हो, भूल गए हो कौन हूं, शरीर समझ रहे हो, मैं भोगता हूं समझ रहे, यही तो एक बड़ा नशा है, उसके ऊपर और नशा डाल रहे हो, तो इसलिए बताया जाता है दूसरा नियम नशा मत करो। तीसरा है लक्ष्मी जो है अपने पैसे को ऐसी जगह पे मत डालो जहां पे ऐसा लगता है आज 100 डाला तो कल 200 हो जाएगा, तो जुआ मत खेलो। लक्ष्मी को धाव में लगा रहे हैं लोभ के कारण। और चौथा है पति एक पुरुष और स्त्री का संग होता है विवाह के बाद, व्यभिचार मत करो। ऐसे इन्होंने 4 नियम है ना, इंग्लिश में बोलते हैं इलिसिट सेक्स, हाँ, जो आजकल टीवी सीरियल में पिक्चरें बनती हैं, ग्रंथ बनती है, पूरा इस नियम को पूरी तरह से प्रभावित करती है ना। अरे आधुनिक जीवन है, हम सब प्रभावित हैं, लेकिन सुख चाहते हैं जीवन में, ये तो आप लोग ने सब हाथ उठाया, तो शास्त्र के अनुसार ये खंडन है। क्या था 4 नियम, कोई बता सकता है? एक है मांसाहारी नहीं करना, शाकाहारी भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उत्कृष्ट है, और दूसरा है नशा नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, और ऐसे परस्त्री, इसलिए हमारे यहाँ के समाज में अपने पत्नी को छोड़कर हम दूसरे हर एक महिला को माताजी बोलते हैं। अभी कोई 16 साल की लड़की को कोई माताजी बोलेगा उसको अच्छा नहीं लगेगा, अरे आप क्या मैं माताजी लग रहा हूँ क्या मैं तुम्हें? लेकिन उसका अर्थ यह है कि मैं इज्जत कर रहा हूँ तुम्हारी, ये एक यहाँ का एक संस्कार है, समझे आप? और इस 4 नियमों के साथ अगर भगवान का नाम जाप करेंगे आप, तो अब तुरंत शुद्ध सत्व आम आ जाएगा। आसुरिक सत्व होता है नीचे, मैंने बताया ना आपको 4 लाख योनियों में सब चेतनाओं के ऊपर होती है, तो जैसे भगवान का नाम जाप करने लगेंगे, जो कलयुग के लिए एक वरदान दिया गया है। अरे कलयुग में लोग एकदम मंद, प्राय न अल्प आयुषा, कलेर अस्थिर युगे जना मंद स मंद भाग्य उपाद्रता, ये शास्त्र में लिखा है कलयुग में लोग सब टेंशन में रहने वाले, सबको चिंता ही चिंता है, उसके लिए सिर्फ भगवान का नाम उच्चार करने से तुरंत चेतना ऊपर आती है। और वो महामंत्र क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी 12 बज गए, तो अभी आरती शुरू होगा, तो आप लोग सब लोग आरती में भाग लीजिए। उसके बाद आरती के बाद प्रसाद तो 2-2.5 बजे तक चलते रहेगा, जिसके पास समय है अगर किसी का कोई निजी सवाल है तो मैं यहाँ पे बैठे रहूँगा, अगर आपका कोई सवाल है या कुछ सामाजिक या हमारे गोवर्धन ऋषि क्षेत्र के गतिविधियों के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप सब के लिए मैं यहाँ बैठकर प्रयास करूँगा आपके सवालों का जवाब देने के। तो फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुन रहे थे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के सत्संग में भाग लीजिए और अपने जीवन को सार्थक कीजिए, क्योंकि ये शरीर नाश्वर है, कुछ समय के लिए इसका एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य को छोड़कर आप कुछ भी और कुछ करेंगे तो ये मनुष्य शरीर जो मिला है उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत पछताना पड़ेगा। अरे मैं किस लिए, मैं इधर जीवित था लेकिन किसी ने बताया नहीं। लेकिन आज आप नहीं बोल सकते ऐसे, आज आप बोल सकते हैं किसी ने बताया नहीं। कितने लोग अभी बोलेंगे नहीं नहीं मैंने कुछ सुना ही नहीं। तो अभी सुनने के बाद कोई नहीं बोलेगा कि मैं मुझे नहीं मालूम था। अभी आपकी जिम्मेदारी बढ़ गई। हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान आदि कृष्ण प्रभु जी। अच्छा लगा सबको? तो बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभु जी ने दैवी संपद और आसुरी संपद, क्या देवी गुण है, आसुरी गुण क्या है, उसके बारे में बताया। और गर्भाधान संस्कार, दान करने का महत्व, ये सब प्रभु जी ने बताया। लेकिन हमें अभी मालूम है गर्भाधान संस्कार हुआ है हमारा, नहीं हुआ है, हम दान कर रहे हैं नहीं कर रहे, दान करने की इच्छा है नहीं है। लेकिन प्रभु जी ने बताया कि कैसे प्रभुपाद जी की कृपा हमारे ऊपर हुई है। प्रभुपाद जी ने चार नियमों का पालन बताया हमें, और जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है चैतन्य महाप्रभु जी ने जो हमें दिया है, उसका अगर पालन करेंगे हम तो हमारे जीवन में हम ये जो दैवी संपद है, जो दैवी गुण है, उसको हम ला सकते हैं हमारे जीवन में। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वेर गुणे तत्र समासते सुरा। जब हम भगवान की भक्ति में लग जाते हैं, भगवान के नाम जप में लग जाते हैं, तो सभी देवताओं के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। तो बहुत सुंदर प्रकार से प्रभु जी ने यह बताया, तो उनका हम आभार व्यक्त करेंगे 3 बार एक साथ हरि बोल बोल के। सब लोग हाथ ऊपर कीजिए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हर रविवार को ऐसे हमारा गोवर्धन इको विलेज में ये रविवार ये सत्संग कार्यक्रम होता है, तो आप यहाँ पे आए तो हम श्री राधा वृंदावन बिहारी जी, श्री गौरांग महाप्रभु, श्री श्री राधा मदन मोहन जी और गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना करते हैं कि आपका आज का दिन जो है ये कृष्ण भावनामय जीवन का एक उज्ज्वल दिन की शुरुआत बने आपकी, और हर रविवार को यहाँ पे आके आप हमें प्रेरणा देते रहें। तो यहाँ पे अभी राजभोग आरती होगी, तो सब हम खड़े होंगे यहाँ पे और आरती में भाग लेंगे, साथ ही साथ में यहाँ पे कीर्तन भी चलते रहेगा। और आरती के पश्चात सबके लिए भोजन की व्यवस्था ललिता भवन हॉल में की है। हरे कृष्ण।
जय श्री कृष्ण चैतन्य।